अयि मित्रगणाः आगच्छन्तु, स्वागतमस्तु सर्वेषां रेडियो मधुबनस्य श्रव्यमञ्चे। शृण्वन्तु अस्माकं प्रियं कार्यक्रमं पठामि संस्कृतम् इति। मित्रगणाः, अद्य वयं वन्दे मातरम् इति काव्यं तथा च महिम्नस्तोत्रस्य पाठं पठामः। प्रथमं तु वन्दे मातरम् इति काव्यम्। इदं काव्यं श्री बङ्किमचन्द्र महोदयः लिखितवान्। अतीव सुन्दरम् इदं काव्यम् अस्माकं राष्ट्रगानस्य समकक्षी वर्तते। शृण्वन्तु, अर्थात् हे मित्रगण, आइए, सबका स्वागत है रेडियो मधुबन के श्राव्य मंच से। हमारा प्रिय कार्यक्रम पठामि संस्कृतम सुनिए। मित्रगण, आज हम वंदे मातरम यह काव्य तथा महिम्न स्तोत्र का पाठ पढ़ेंगे। पहले वंदे मातरम को पढ़ते हैं। यह काव्य श्री बंकिम चंद्र महोदय ने लिखा और बहुत ही सुंदर यह काव्य है, जिसे हमारे राष्ट्रगान के समकक्ष रखा गया है। तो सुनिए। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकित यामिनीम फुल्लकुसुमित द्रुमदल शोभिनीम सुहासिनीम सुमधुरभाषिणीम सुखदाम वरदाम मातरम वंदे मातरम इति। तो क्या है इसका अर्थ? वंदे मातरम अर्थात माता या भारत माता, मैं तुम्हें नमन करती हूँ। वंदे, मैं नमस्कार करती हूँ। मातरम अर्थात माता को, परंतु यहाँ माता शब्द भारत माता के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। और आगे इस भारत माता का वर्णन इस प्रकार है। सुजलाम अर्थात जो जल से परिपूर्ण है, इसकी भूमि पर जल परिपूर्णता से उपलब्ध है। सुफलाम और अच्छे फल देने वाली है, अधिकाधिक धान्य फल फूल इत्यादि उगाने वाली है, इसलिए सुफलाम। और मलयज शीतलाम, तो मलयज अर्थात मलय नामक पर्वत से टकरा करके जो वायु बहती है, उस वायु को कहेंगे मलयज। और वह वायु पूरे देश भर में फैलती है, दक्षिण दिशा से आते हुए और पूरे देश में देश को ठंडा करते हुए बारिश ले आती है। इसलिए मलयज अर्थात मलय पर्वत से निकली हुई वायु के कारण शीतलाम, जो शीतल हो चुकी है ऐसी भूमि। और शस्य श्यामलाम, शस्य अर्थात धान का, तो शस्य श्यामलाम अर्थात धान का सांवला रंग लिए हुए जो है, ऐसी भारत माता। अर्थात यहाँ पर धान बहुत अधिक उगता है, तो जब खेतों में धान उगा रहता है तो धरती का रंग श्यामल सांवला हो जाता है उस धान के कारण, इसलिए शस्य श्यामलाम। और आगे कहते हैं शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकित यामिनीम। ये पूरा एक शब्द है जो कि सामासिक शब्द है, समास है। शुभ्र अर्थात धवल सफेद, ज्योत्स्ना, ज्योत्स्ना कहते हैं चांद की जो चांदनी, चांद का जो प्रकाश होता है ठंडा शीतल और शुभ्र प्रकाश होता है, उसे ज्योत्स्ना कहा जाता है, चांद की चांदनी। और उससे पुलकित यामिनीम, उसके कारण जो प्रसन्न है प्रफुल्ल है ऐसी यामिनीम, यामिनी अर्थात रात। तो चंद्रमा के शांत आह्लाददायक शुभ्र प्रकाश के कारण, शुभ्र चांदनी के कारण जो पुलकित है ऐसी रात जहाँ होती है, ऐसी भूमि यह भारतवर्ष है। और फुल्ल कुसुमित द्रुमदल शोभिनीम, द्रुमदल अर्थात पेड़ों की डंडियां, और फुल्ल कुसुमित, कुसुम अर्थात फूल, कुसुमित अर्थात फूलों से भरी हुई। और कैसे फूलों से? तो फुल्ल कुसुमित मतलब खिले हुए फूलों से भरी हुई जहाँ पेड़ों की डंडियां हैं, ऐसी जो भारत माता है। और सुहासिनीम, यह हसमुख है, सुमधुर भाषिणीम, और इसकी बातें सुमधुर हैं, अर्थात इसके रहने वाले लोग सुमधुर भाषा सुमधुर वाणी बोलते हैं। सुखदाम, सुख देने वाली, वरदाम, वर देने वाली मातरम अर्थात माता, तो ऐसी यह भारत माता का वर्णन है। और मित्रों, तुमने देखा होगा कि यहाँ हर शब्द में द्वितीया विभक्ति है, क्योंकि हम जिस भारत माता का वर्णन कर रहे हैं उसे नमस्कार कर रहे हैं, इसलिए प्रत्येक शब्द में हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे मातरम, सुजलाम, सुफलाम, मलयज शीतलाम, शस्य श्यामलाम इत्यादि। तो ऐसी माता को नमन है, इसलिए हर शब्द में द्वितीय विभक्ति लग रही है। और आगे महिम्न स्तोत्र का एक श्लोक पढ़ते हुए हम चलेंगे, ताकि आगे भी हम महिम्न स्तोत्र को पढ़ सकें। महिम्न पारन्ते परम विदुषो यद्य सदृशी स्तुतिर ब्रह्मादीनामपि तदवसन्नास्त्वयि गिरः अथा वाच्यः सर्वः स्वमति परिणामावधि गृणन् ममाप्येष स्तोत्रे हर निरपवादः परिकरः। मित्रों, महिम्न स्तोत्र बहुत सरल स्तोत्र नहीं है, इसे समझने में थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, पर बहुत ही मधुर स्तोत्र है, बहुत मधुर छंद में है और इसका अर्थ भी बहुत ही सुंदर और शब्द लालित्य लिए हुए है। तो यह महिम्न स्तोत्र शिव जी के लिए कहा गया है। इसकी आखिरी पंक्ति में कहा गया है, ममाप्येष स्तोत्रे हर निरपवादः परिकरः। तो हर यह शिव जी के लिए संबोधन है। तो हे हर, तुम्हारे प्रति इस श्लोक के माध्यम से मैं कुछ कहने जा रही हूँ। तो यह कवि कहता है कि मैं कुछ कहने जा रहा हूँ, क्योंकि इस महिम्न स्तोत्र के रचनाकार कवि का नाम है पुष्पदंत। तो पुष्पदंत ये कहता है कि हे शिव, हे हर, तुम्हारी जो महिमा है, महिम्न, तुम्हारा जो बड़प्पन है, उसका पार किसी को नहीं मिल सकता। तो मेरे जैसा जो परम अविदुष व्यक्ति है, अविद्वान व्यक्ति है, उसे कैसे पार मिलेगा। लेकिन ब्रह्मा भी तुम्हारा पार पाने के लिए जो स्तुति करते हैं वह भी अपर्याप्त होती है, अवसन्नः अर्थात अधूरी या पूरी नहीं पड़ने वाली है। तो यद्यपि मैं तुम्हारी स्तुति गाने के लिए अधूरा हूँ, अयोग्य हूँ, पूरा नहीं हूँ, क्योंकि मेरा ज्ञान सीमित है, बल्कि मुझे अविदुषः कहना पड़ेगा, तो मेरे पास तो इतनी विद्वत्ता है ही नहीं कि मैं तुम्हारी स्तुति ठीक तरह से कर सकूं। फिर भी, और आगे भी मैं देखता हूँ कि अथा वाच्यः सर्वः अर्थात सभी जन अवाच्य हो जाते हैं, अर्थात उनकी बोली रुक जाती है, उनकी भाषा रुक जाती है, उनके शब्द अधूरे हो जाते हैं। तो ऐसी हालत में स्वमति परिणामावधि, मतलब मेरी जो भी मति है, स्वमति मेरी जो भी मति है और उसका जो भी परिमाण है, मतलब जितनी भी मेरी मति है, उसी को संबल बनाते हुए, उसी का आधार लेते हुए मैं तुम्हारी स्तुति में कुछ प्रस्तुत कर रहा हूँ। और यह जो स्तोत्र है जो मैं तुम्हारी स्तुति के लिए गा रहा हूँ या लिख रहा हूँ, तो इस स्तोत्र में बहुत कमियाँ होंगी, ये मुझे पता है। लेकिन जब ब्रह्मा की स्तुति भी तुम्हारे लिए अधूरी ही है, तो मेरी भी स्तुति तुम्हारे लिए अधूरी रहे, तो इसमें मेरे ऊपर कोई बहुत बड़ा अपवाद नहीं आने वाला है, बहुत बड़ा लांछन नहीं आने वाला है। इसलिए ये अधूरी स्तुति भी मेरी दृष्टि में निरपवाद ही है, इस पर कोई उंगली नहीं उठा सकेगा, ऐसा समझ करके मैं यह स्तोत्र लिख रहा हूँ। तो कितनी अच्छी बात कवि कहता है, उसे अपने अज्ञान का पता है, अपने अधूरेपन का पता है, शिव जी की अपार जो व्यक्तित्व है, महिमा है, उसका पता है, और उसे पता है कि उस महिमा का वो पार नहीं पा सकता। लेकिन वो कहता है मेरे ऊपर कोई अपवाद नहीं है, क्योंकि जब ब्रह्मा भी तुम्हारी स्तुति नहीं पूरी तरह से कर सकते, तो फिर मैं तो अज्ञानी ही ठहरा। तो अगर मैंने तुम्हारी स्तुति कुछ कम ही अगर कर भी दी, तो इसमें कोई अपवाद नहीं होगा। और परिकरः मतलब मैं जो प्रयास कर रहा हूँ, इस प्रयास में कोई अपवाद नहीं है। गृणन अर्थात स्तुति। तो इस श्लोक को फिर एक बार दोहराते हैं, महिम्नः पारन्ते परम विदुषो यद्य सदृशी स्तुतिर ब्रह्मादीनामपि तदवसन्नास्त्वयि गिरः अथा वाच्यः सर्वः स्वमति परिणामावधि गृणन् ममाप्येष स्तोत्रे हर निरपवादः परिकरः। तो मित्रों, अगले सप्ताह में इसी के कुछ और श्लोक देखते हुए हम आगे चलेंगे। आज हम यहीं रुकते हैं। तुम सुनते रहो रेडियो मधुबन, पढ़ते रहो संस्कृत, मुस्कुराते रहो। नमस्कार।